Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text Number 67 and 68. कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. शब्दों का अर्थ देखिए. इंद्रियाणां यानी इंद्रियों के ही निश्चय ही चरतां अर्थात विचरण करते हुए, यानी जो इंद्रियां सदैव विचरण करती रहती हैं, मूव अराउंड इधर उधर अपने कार्य करने के लिए अपने विषय को सर्च करती रहती हैं. जो इंद्रियां जिनको हम फुल्ली फ्रीडम देते हैं और अपने विषयों की ओर आसक्त होने के लिए सदैव उत्सुक रहती हैं. यन यन मन यथ जिनके उसके साथ मनो अनुविधीयते अर्थात मन निरंतर लगा रहता है. अब यन का मतलब होता है इसमें से एक इंद्रिय. अब देखो सारी इंद्रियां विचरण कर रही हैं, वो अराउंड इधर उधर देख रही होती हैं और उनमें से एक जिस पर मन लग जाता है कि हाँ ये चाहिए, तो क्या होता है, तदस्ति हरति प्रज्ञां. तत् मन वह अस्य यानी उसकी हरति हरण कर लेता है प्रज्ञां. प्रज्ञां प्रज्ञा मीन्स व्हाट, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. प्रज्ञा मीन्स विजडम. और जब मन एक इंद्रिय जो कि अपने विषय की ओर आसक्त हो गई उसकी ओर लग जाता है, देन क्या करता है, तदस्य हरति प्रज्ञां स्टोलन हिज विजडम. उसका विजडम जो है उसको हरण कर देता है, उसको उसकी बुद्धि को प्रज्ञां उसकी बुद्धि को किडनैप कर देता है. और क्या होता है, किस तरह होता है ये भगवान इसमें बता रहे हैं कि कैसे करता है वो. वायुर्नावम इवाम्भसि, वायु कहते हैं हवा को, नावम मानी कश्ती यानी नाव को, और इव जैसे अम्बसि यानी जल में. यानी जल में जब नाव तैर रही होती है और उस टाइम पर अगर हवा बहुत तीव्र हो जाए तो क्या होगा, तो वो कश्ती जो है नाव जो है उसको उसकी जो डायरेक्शन है ना उससे हटा देगी, उस दूसरी तरफ ले जाएगी उसको. इन अद्भुत शब्दों को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हैं ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదామహయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందే అహం శ్రీగురుః శ్రీయుత్తపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహకరఘునాథం వితంతం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదా సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపిక కాంత శ్రీరాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచనం గౌరంగే శ్రీరాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసూతిదేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వంచాకల్పతరుభయస్య కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితనాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైతం గదాధరం శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథా శ్రీమద్ భాగవత్ భగవద్గీత మాత్రకి आज भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि पतन कैसे होता है. वैसे तो भगवान ने इस अध्याय में अलग अलग तरीकों से बताया है कि हाउ अ पर्सन इज फॉल डाउन. जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे, जैसे अध्याय तो विषयानपूर्ण संगस्तेषु बजाया थे, ये वाले 62 और 63 में भगवान ने एकदम सही फॉल डाउन का एक पूरा सूत्र बताया है कि विषय इंद्रियों की के बारे में ध्यान करने से क्या होगा, आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति और संग संगात संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते और क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. कि फिर ऐसे करते करते क्रोध उत्पन्न होगा और फिर हम भूल जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है और गलत कर बैठेंगे, बुद्धिनाश हो जाएगी और उसके बाद फॉल डाउन प्रणश्यति. इसी बात को आज भगवान श्री कृष्ण और भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं. भगवान ने कहा इंद्रियाणां हि चरताम यन मनो अनुविधीयते. अब इंद्रियां तो वैसे अर्जुन को बताया कृष्ण ने कि इंद्रियां तो अपने कार्यों में लगी हुई होती हैं, अपना अपना कार्य कर रही होती हैं, आंखें देखने का काम कर रही हैं और है ना हाथ कार्य कर रहे होते हैं और कर्ण श्रवण करने का कार्य कर रहे हैं. लेकिन ऐसा मत सोचो कि अगर इनमें से किसी को रोक दिया और मतलब ज्यादातर को रोक गया, अगर एक भी उसमें से रह गई, मतलब कंट्रोल करने से उसको एक भी इंद्रिय ऐसी रही जिसको कंट्रोल ना किया हो. यन मनो अनुविधेर, यन मनो बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट, यन मनो जिसके साथ, अब एक इंद्रिय अगर उसके साथ भी मन लग गया, जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना विश्वामित्र की बाकी सारी इंद्रियां कंट्रोल थी, सारी कंट्रोल में थी, हाथ पांव और आंखें भी बंद थी और मुख से भी वो जब कर रहा था भगवान के ना, लेकिन कान कंट्रोल नहीं था. कान के अंदर मैनिका के पायल की आवाज जा रही थी. इस तरह से भगवान बता रहे हैं, देखो ऐसा है कि इंद्रिया विचरणशील इंद्रियों में ज्ञान मनो अनुविधीयते। अगर एक भी इंद्रिय ऐसी होगी जिसके ऊपर मन टिक गया तो क्या होगा, तदस्य हरति प्रज्ञा, फिर आपकी बुद्धि का हरण हो जाएगा और आपकी बुद्धि को किडनैप कर देगी वो इंद्रिय जिस पर मन टिका हुआ है। किस तरह से, वायुर नावम में वाम भसी। वास्तव में ये वाला जो थीम है ना, ये एग्जैक्ट वही थीम भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 60 में बताया। श्लोक नंबर 60 में भगवान ने क्या कहा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ति, सॉरी 60 श्लोक नंबर 60 में भगवान ने बताया, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, के अर्जुन इंद्रिया इतनी प्रबल हैं तथा इतनी वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब इन दोनों में क्या है, इंद्रियों की वजह से पतन होना है, दोनों श्लोक में यही बताया, आज भी भगवान यही बताए। लेकिन इस 60 श्लोक में और इसमें क्या था, थीम तो सिमिलर है लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। भगवान ने पहले क्या कहा है 60 में कि आप भले कितने ही विवेकी हो और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो लेकिन फिर भी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो विवेकी पुरुष के मन को भी हरण कर लेती। लेकिन आज भगवान बोल रहे हैं कि यदि आप इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो, इंद्रियों को विचरण करने दे रहे हो, फिर उसमें से वो सारी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी लेकिन जिसके ऊपर मन आकर्षित हो गया तो वो इंद्रिय जो है वो आपकी बुद्धि को हर लेगी। और जिस प्रकार जल के अंदर जो वायु सॉरी समुद्र के अंदर जो कश्ती होती है तो जब तेज प्रचंड वायु आती तब उसकी गति को चेंज कर लेती है। अनुवाद देखिए, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि आप जिस जगह पर रह रहे हो ना वो वहां पर हर समय रिस्क है। जैसे कश्ती यानी जब एक नाव समुद्र में होती है तो वो हर समय रिस्क में होती है कि कभी भी वायु का रुख चेंज हो सकता है और जब वायु की डायरेक्शन अलग हो गई, तूफान किसी भी तरफ चला गया तो उस टाइम पर कश्ती उस तरफ घेर दी जाएगी, उस तरफ जबरदस्ती जाना पड़ेगा। कश्ती अगर नहीं भी जाना चाहती है तो भी उस तरफ उसको जाना पड़ेगा क्योंकि वायु नावाम बसी, क्योंकि वो कश्ती जो है उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो प्रचंड वायु का सामना कर सके, है ना। उसी प्रकार हम सब इस भौतिक जगत में एक कश्ती के मानंद है, वी आर ऑल लाइक अ बोट एंड माया इज लाइक अ विंड। जैसे प्रचंड वायु, अब हम क्या, माया बहुत प्रबल है, हमारे अंदर इतना पावर नहीं है कि हम माया के साथ मुकाबला कर सकें। और क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो माया किसी भी टाइम पर अटैक कर सकती है, इसलिए हम हर समय रिस्क में हैं, सदैव इस बात का खतरा बना रहता है, सदैव इस बात का एक चांस बना रहता है कि माया अटैक करेगी, माया अटैक करेगी। ये माया बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा हमारे इंद्रियों के अंदर, हमारे किसी मन या इंद्रियों में इतना पावर नहीं है कि वो माया से मुकाबला कर सके या माया जो भी हमारे ऊपर अट्रैक्ट कर रही है उसका सामना कर सके। इसलिए भागवत कहता है कि ये मनुष्य जीवन जो है वो कश्ती के समान है और ये भवसागर जो है वो माया के समान है। अब कश्ती आपके पास है लेकिन माया का असर कभी भी पॉसिबल है, लेकिन यदि कोई एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट करणधार आपको मिल जाता है जो कि हर तरह के वायु के हिसाब से कश्ती को चलाना जानता है तो वो कभी आपको डूबने नहीं देगा। उसी प्रकार शास्त्र कहता है गुरु करणधार कि आप अपनी इस कश्ती का, अपनी जो नाव है उसका कर्णधार, उसका चलाने वाला एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव गुरु जो है उसको बना दो, फिर वो माया के अंदर, क्योंकि वो कर सकता है ना। अब यहाँ पर क्या थीम है कि हायर पावर मेक्स अस हेल्पलेस। जब क्योंकि कश्ती जो है, नाव जो है, उसका पावर कम होता है, तो जब तेज प्रचंड वायु आती है तो नाव का बहाव ले जाती, लेकिन उससे ज्यादा पावर जो एक एक्सपर्ट मल्लाह के पास, एक्सपर्ट जो चलाने वाला होता है ना करणधार, उसके पास ज्यादा होता है। फिर वो हवा की विंड जो ये वो प्रचंड वायु ना, उसकी डायरेक्शन के हिसाब से नाव को घुमाता है और जाके अपने लक्ष्य पर किसी भी तरह से पहुंच जाता है। उसको एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि कैसे करना है। उसी प्रकार अब उस माया से भी ज्यादा पावर होता है गुरु, शुद्ध वैष्णव में। तो यदि हम किसी शुद्ध वैष्णव का सरेंडर करते हैं, किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हम इस मोह माया से, इस भौतिक जगत की माया से आसानी से पार, उसको आसानी से पार कर सकते हैं। अब इसके भी अलग अलग रूल्स हैं। जैसे मेन तो क्या है, भाव सागर को पार करना है ना, इस माया मोह माया को, जगत को पार करना है। तो अगर हम भक्तों का संग करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर गुरु का वैष्णव का संग करेंगे तो इजीली हम इस भाव सागर को, इस मोह माया को पार कर जाएंगे। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो बहुत टफ लगेगा। इस मतलब भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ना बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ में अभक्तों का संग कर रहे हैं तो उससे भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि साथ में अभक्त है। अभक्त से क्या मुराद है, जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है लेकिन भगवान के मतलब नॉन डिवोटी तो है लेकिन एंटी डिवोशन नहीं है। वो भगवान को के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन बस वो क्या सोचते हैं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप मुझे मत बोलो कि कृष्ण भक्ति में आओ, मैं भी आपको नहीं बोलूंगा कि इधर आओ। तो ऐसे लोगों का अगर संग करेंगे तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि मतलब वो आपकी भक्ति में उन्नति नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक कब हो जाता है हमारे लिए, जब हम एंटी डिवोटीज के साथ संग करते हैं, यानी कि जो भक्ति को बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग बोलते हैं, यानी कि कृष्ण भक्ति के खिलाफ होते हैं। तो संग जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे भक्तों के संग में खुद ब खुद उन्नति हो रही होती है, भक्तों भक्ति की खुद ब खुद दिल कर रहा होता है मंगल आरती करनी है, मंगल आरती का समय हो गया है, फौरन से भोग लगाना है भगवान को, फौरन से भगवान की श्रृंगार करना है और उसके बाद चैंटिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद इस सेवा की तैयारी करनी है। सेवा जब भक्त साथ होंगे ना तो खुद ब खुद, क्योंकि वाइब्रेशन इतना अच्छा हो रहा होता है कि खुद ब खुद सेवा हो रही होती है साथ में। लेकिन जब भक्त साथ नहीं होंगे तो क्या होगा, हम कर रहे होंगे लेकिन फिर भी मुश्किल लग रहा होगा, अभी आरती का टाइम हो गया है तो करना है ऐसे। लेकिन अगर अभक्तों का साथ करेंगे ना तो फिर तो करेंगे ही नहीं, बोलेंगे छोड़ो खाम खा, उसका मूड खराब होगा ये इससे कर। और जो एंटी डिवोटीज होंगे उनके साथ अगर हम संग करेंगे फिर तो रख देंगे माला साइड में, करनी ही नहीं है अभी, क्योंकि उसके साथ हम लोग का उठना बैठना है और जाना फिरना घूमना, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है, बार बार किटकिट होती है, तो इससे बेहतर नहीं करेंगे। तो भगवान यहाँ पर हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, कि हमारी इंद्रियां विचरण करती रहती हैं और एक यदि उसमें से एक में यदि हमारा मन लग जाता है तो वो हमारी प्रज्ञा को, हमारी बुद्धि को हरण कर लेता है, जिस प्रकार प्रचंड वायु जल में नाव को जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी हो तो, और यदि उनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपथ कर सकती है। सिर्फ एक इंद्रिया, अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल, अभी आगे भगवान बोलेंगे सर्वशः, सारी इंद्रियों को करना है, एक भी ऐसा नहीं सोचना है कि चलो ठीक है मैं ना ये तो कर रहा हूँ भगवान के, खाली दर्शन नहीं कर रहा हूँ, दर्शन तो दूर टीवी का कर रहा हूँ, लेकिन मुख से तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, बोलते टीवी के सामने बैठ के मुझे माला करने में मजा आ रहा होता है, पता नहीं चल रहा इसको कि वो मजा मुझे टीवी देखने में आ रहा है या भगवान का नाम जप करने में आ रहा है। और टीवी के सामने माला करता हूँ, रिलैक्स सारी माला हो जाती, पता भी नहीं चलता। तो ऐसा नहीं, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर एक भी इंद्रिय जिस पर मन टिका हुआ होता है, और वो डेफिनेटली टिका हुआ होता है, मंत्र निकल रहा मुंह से लेकिन जस्ट निकल रहा होता है, उसके ऊपर मन नहीं लगा होता है, मन क्योंकि मजा आ रहा है उसको टीवी देखने में, उसमें लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर उसमें लगा हुआ है तो तदस्त हरति प्रज्ञाम, फिर प्रज्ञा को हर लेता है और वो अपने रूल्स बनाता है। मेन तो क्या है, 16 जप करने हैं भगवान का नाम, जिस प्रकार से भी लो तो सही होता है। अब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ तो कहीं कर ही नहीं, उससे बेहतर कर ही नहीं रहा हूँ तो इससे बेहतर यहीं पर बैठ के करूँ। क्यों नहीं कर रहे हो, आप मनुष्य हो, आपको पता है कि जप करना चाहिए, सर सारी चीजों के लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो, तो जप के लिए टाइम क्यों नहीं निकालो, निकालो इस तरह से। लेकिन चलो ठीक है, जिस तरह भी कर रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कोई आर्ग्यू नहीं है, हमें अपने से सिंसियर होना है, अपनी भक्ति से सिंसियर होना है, कृष्ण से सिंसियर होना है। ऐसे थोड़े ना जैसे दिल करे वैसे करें। तो यहाँ पर भी श्री रूपा जी आगे बता रहे कि यदि सारी इंद्रियां भगवान में नहीं लगेंगी, सिर्फ एक भी ऐसी होगी जिसमें जो भगवान की सेवा नहीं कर रही है और उसकी तरफ अगर मन आकर्षित हो जाएगा तो वो क्या होगा, भक्त को दिव्य प्रगति के पथ से विपत कर देगी। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया था, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। सारी इंद्रियों को, पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन किधर लगेगा, उनमें से मन का क्या काम है, इंद्रियां जो जो कार्य कर रही उनमें से किसी एक में टच होना है, कुछ सुना है तो वो चीज के बारे में सोचना है, कुछ देखना है देखा है तो उसकी चीज के बारे में सोचना है कि ये चाहिए ये चाहिए, कुछ खाया है तो उस चीज के बारे में सोचना है कि ये चाहिए ये चाहिए। अब वो जब सुन भी भगवान के विषय में रहा है, देख भी भगवान को रहा है और खा भी भगवान का प्रसाद रहा है, बोल भी भगवान के विषय में रहा है, तो फिर अटैक किस पे होगा, उसी में, मन का अटैक उसी में से किसी एक में होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम है ना दुनियावी कार्य करना छोड़ दें, लेकिन आगे भगवान बताएंगे कि किस तरह से करना है। लेकिन अभी तो भगवान ने ये कहा कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कंटिन्यू लगाओ। अब जो भी कार्य कर रहे हो तो उसमें क्या सोचो कि ये मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 68 में भगवान कहते हैं, तस्माध्यस्य महाभाहो निकृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माध्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माध्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, एक ही इंद्रिय जिस पर मन टिका हुआ होगा वो आपकी प्रज्ञा को हरण कर लेगी। तो करना क्या है, तस्मात, तस्मात मना अतः, यानी इसलिए, यस्य जिसकी महाबाहो, हे महाबाहो, निगृहीतानि इस तरह से वशीभूत, स सर्वशः सब प्रकार से। अब भगवान बता रहे हैं कि देखो एक भी अगर छूट रह गई ना एक भी इंद्रिय को, तो वो तो आपका पतन करा देगी, बेड़ा गर्क कर देगी आपका। इसलिए अपने बेड़े को अगर पार लगाना है तो क्या करो, निगृहीतानि सर्वशः, सारी इंद्रियों को निगृहीतानि का मतलब होता है कंट्रोल करो। अब यहाँ पर एक बात बताना है, कंट्रोल और अवॉइड में फर्क होता है। कंट्रोल करने के लिए भगवान ने कहा है ऐसा नहीं इंद्रियों से कार्य ही मत करो, इंद्रियों से कार्य करो, लेकिन इंद्रियों से कार्य कैसे करो, अपने प्लानिंग के मुताबिक, इंद्रियों की प्लानिंग के मुताबिक ना चलो, उनको कंट्रोल करो, अपने कंट्रोल में रखो। सर्वशः, सर्वशः का मतलब होता है, अब देखो सर्वशः का दो मतलब होता है। सर्वशः का मतलब होता है एक तो सारी इंद्रियों को और दूसरा सारी टाइप की, एक तो हमारी सारी इंद्रियों को और दूसरा हर तरफ से उसको कंट्रोल करना है, हर तरफ से। ऐसा नहीं कि एक तरफ आपका छूट गया, जैसे आना वो अजमेर था क्या, वो बाकी इंद्रियों को काम में लगा रहा था लेकिन उसकी आंख लग गई, उसने देख लिया वो शुद्र और शुद्रानी को एम्ब्रेस करते हुए, लेकिन उसकी आंख ने देख लिया और फिर उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब हर तरफ से अपनी इंद्रियों को देखना है कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। जैसे ही कोई चूक हो जाएगी तो क्या होगा, तदस्य हरति प्रज्ञां। तो कोई भी इंद्रिय को आप ऐसा नहीं, अपने कंट्रोल में सारी इंद्रियों को रखना है, किसी भी इंद्रिय को छूट नहीं देना है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो कि सारी इंद्रियों को उनके विषयों से रोकता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसे ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इतना मुश्किल काम हम क्यों कर रहे हैं, इतने सारी इंद्रियों को कंट्रोल क्यों कर, क्योंकि ये तो भगवान ने पहले ही बता दिया है कि वो क्यों करना है, उसके लाभ तो बता, याद है ना आपको श्लोक नंबर 51 याद करने का है, कर्मजं बुद्धि युक्ता हि परम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनुर्मुक्ता परम गच्छन्ति नामयम्। कि यदि इस प्रकार से हम प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अपनी बुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है, और ये कैसा होता है वो तो अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसा, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था ना विचरण के व्रजेतकम्, ये व्रजेतक ही जवाब अभी तक भगवान दे रहे हैं कि वो कैसे कार्य करता है, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो भगवान अभी यह भगवान ने बताया ना, इंद्रियाणाम ही चरताम, चरताम का मतलब होता है मोह करना और चलना, ये व्रजेत का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो भगवान अभी तक यही बता रहे हैं कि किस तरह से वो कार्य करता है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, दुखों के सागर में गिरने से बच जाएगा, जितने भी कष्ट हैं वो सब कर्मों के फलों के अनुसार मिल रहे हैं, और इससे क्या होगा, 39 में बताया कर्म बंध प्रहास्यसि, कर्मों का बंधन छूट जाएगा, और आगे बताया 51 में पदम गच्छन्ति नामयम्, ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर दुखों का कोई काम नहीं है, जो समस्त दुखों से बिल्कुल परे है, समस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उसके लिए कुछ तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं करना क्या है, तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और इंद्रियों को उसके विषयों से रोकना है, ऐसा होता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसीलिए उसको मैं समस्त कर्मों के फलों से रोक देता हूँ, उसके सारे कर्मों के जितने भी फल हैं उसको खत्म कर देता हूँ, और जन्म मरण के चक्कर से बचा लेता हूँ और अपने धाम में लेके जाता हूँ। अनुवाद देखिए, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थित है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद शुभपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की देवीय प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमन किया जा सकता है। अब इंद्रिय तृप्ति की जो शक्ति है ना बहुत बलवान है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी सारी इंद्रियां चाहती हैं कि उनका उनका विषय मिले, क्योंकि हर चीज हर इंद्रिय अपना अपना विषय चाहती है, लेकिन हमें क्या करना, इंद्रियाण इंद्रिया इंद्रियों को उसके विषयों से रोकना है, रोक कंट्रोल करना है। तो किस तरह से, इसका आंसर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा। ये सिर्फ कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही पॉसिबल है कि अपनी इंद्रियों को सारी सुविधाएं भी प्रदान करो और फिर भी आप कभी भी इंद्रिय के मोह में नहीं फंसोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर, कृष्ण प्रेम करने का दिल है तो कृष्ण से प्रेम करो, कुछ खाने का दिल है तो कृष्ण को खिला के खाओ, कुछ सुनने का दिल है तो सुनो ना भगवान के इतने प्यारे प्यारे मधुर नाम है, और कुछ बोलने का दिल है तो भगवान के विषय में बोलो, कुछ खाने का विषय तो भगवान का प्रसाद खाओ, और अगर स्पर्श करने का दिल है तो भक्तों के चरणों को स्पर्श करो। कितना अच्छा है कि आपकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं और साथ साथ में वो संतुष्ट हो रही हैं। उसको इसमें इतना आनंद है कि भौतिक किसी चीज में, फिर वो सारी भौतिक चीजें अगर आप थोड़ा भक्त थोड़ा भी आगे आता ना भक्ति में, फिर भौतिक चीजें उसको हीन लगती हैं, दिल नहीं करता है उनकी ओर, खाली देखने का भी दिल नहीं करता, उनको ग्रहण करने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको खाली जो भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, उनके बारे में सोच कर भी उसको घृणा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उत्तम रस को प्राप्त कर दिया ना, उत्तम टेस्ट उसके जीवा पे लग गया, अब ये भौतिक नकली टेस्ट उसको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जीव इटर्नल है और संसार की सारी चीजें अशाश्वत हैं, दुखमयी हैं, तो इटर्नल चीज को केवल इटर्नल से ही आनंद आ सकता है। जीव शाश्वत है, जीव अनादि है, जीव अजन्मा है, और भगवान के अंदर वो सब क्वालिटीज हैं जो जीव के प्रीतम के अंदर होनी चाहिए। संसार की कोई चीज प्रेम करने योग्य नहीं है, ना कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति। तो जब हमें ये रियलाइज होता है कि अब हमारा संबंध जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे कृष्ण के साथ हो जाता है जो हमारे जैसी क्वालिटीज रखता है, हम अणु हैं और वो विभु है, हम हमेशा चाहते ना हमसे श्रेष्ठ होना चाहिए हमारा प्रीतम, और अगर देखा जाए तो हमसे श्रेष्ठ कृष्ण के अतिरिक्त संसार में और कोई भी नहीं है, क्योंकि बाकी संसार की समस्त चीजें जो हैं वो नाशवान हैं, केवल कृष्ण ही सदैव रहने वाले हैं और हम आत्मा हैं, तो हमारा मेल केवल परमात्मा के साथ, और जब उसका थोड़ा सा भी जायका जीव चख लेता है तो वो आनंदी भवती, उसको आनंद आना शुरू हो जाता है, उसके हृदय में इतना आनंद आता है कि फिर भौतिक पदार्थ उसको तुच्छ लगने लगते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमन किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। कोई बोले मानवीय प्रयास मतलब बस मैं अपनी इच्छा से ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, इससे नहीं, जब तक आपको भगवान, अभी भगवान पहले बोल चुके हमें प्रसादे सर्वदु प्रसाद प्राप्त होगा, भगवान ने कहा था आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, जब आप प्रयास करोगे तो मेरी कृपा प्राप्त होगी, और ये जो इंद्रियों का दमन है वो हम अपने मानवीय प्रयास से नहीं कर सकते, श्री प्रभुपाद ने लिख कर दे दिया कि ये मानवीय प्रयास के द्वारा संभव नहीं है, अपितु तो उन्हें भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम्य कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन पर करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपना डिसीजन लेते हुए कहा है कि आपको यदि मोक्ष का अधिकारी बनना है तो सबसे पहले क्या करो, आप किसी गुरु के पद प्रदर्शन में जाओ। गुरु का पद प्रदर्शन जो है वो अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आपको कश्ती चलाना नहीं आता है तो अपनी कश्ती का चप्पू जो है वो किसी कर्णधार के हाथ में सौंपना पड़ेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने कहते हैं यदि व्यक्ति ये बात को हृदय गम्य कर ले, यानी ये बात को जान ले, समझ ले, कंठस्थ कर ले, ये बात को अपने दिल में बिठा ले कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर हो सकती है, सिर्फ अपनी प्रज्ञा को स्थित करना है, क्योंकि भगवान ने कहा मेरे तक पहुंचना है तो आपको ये करना पड़ेगा, यदि जन्म मरण के चक्कर से छूटना पड़ेगा तो ये आपको करना पड़ेगा, यदि आप कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को स्थित करना पड़ेगा। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका एक ही तरीका है कि आप कृष्ण भावनामृत में आ जाओ, उसमें सम्मिलित करो, आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना ही पड़ेगा और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, और इसके लिए आपको एक प्रमाणिक गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी, और जो ऐसा करता है, इस तरह का अभ्यास करता है, वह साधक कहलाता है और मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, हम गुरु के माध्यम से करते भी हैं, तो फिर ऐसा अर्जुन ऐसा बोल सकता है, हाउ डज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को हर समय कंट्रोल करें, जिनके हम जीव हैं को पत्थर थोड़े हैं जो इच्छा ही नहीं होगी हृदय के अंदर, ऐसा वो सोच सकता है। तो यहाँ पर आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे, बहुत ही सुंदर बात है एक्चुअली, अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं एक्चुअली यू शुड चेंज योर वैल्यूज, कि आप जिस जिस चीज को वैल्यू दे रहे हो ना, अब आपको उसको अपनी चीज को दूसरी चीज में वैल्यू, यानी कि अब आज तक भौतिक चीजों को वैल्यू दी ना आपने, तभी आप उसकी तरफ अपनी इंद्रियों के कार्य कर रहे, इंद्रियों से भौतिक चीजों के लिए कार्य कर रहे हो या उनको प्राप्त करने की। अब जब आप आध्यात्मिक चीज पर वैल्यू दोगे, उसको ही इम्पोर्टेंट समझोगे, जिस चीज को आप इम्पोर्टेंट समझते हो उसी को तो टाइम देते हो, अगर आप उस भौतिक चीजों को इम्पोर्टेंट समझोगे तो आप उन्हीं को टाइम दोगे, अगर आप आध्यात्मिक चीजों को टाइम दो मतलब ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट समझोगे तो फिर आप उन्हीं को टाइम दोगे। तो भगवान आगे के श्लोक में 69 डरो नहीं पढ़ रही हूँ, कल पढ़ेंगे उसमें समझाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।